So it's our great privilege that a person with this stature is with us today. He belongs to Arya Samaj background. उनकी बचपन में उन्होंने गुरुकुल में भी पढ़ाई की थी. सी इज ए ग्रेट पिलर ऑफ आर्य समाज. इट्स आवर प्रिविलेज टुडे दैट सी इज विथ अस एंड आई एम वेलकमिंग प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार. प्लीज कम टू द पोडियम एंड प्लीज जॉइन विथ मी टू वेलकम प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार. वो आज हम सबको यज्ञ इन वैदिक ट्रेडिशन पर बताएंगे. वेलकम.
प्लीज जॉइन मी टू रिसाइट गायत्री मंत्र एंड सावित्री मंत्र फर्स्ट. ओम कूर्मवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. Namaste and very good morning to all of you. I am delighted to be here in this Arya Samaj, Greater Houston, and I am thankful to Acharya Surya Narayan Ji, whom I have been knowing since long at Delhi, and I was also very, very close to Acharya Premchand Sridhar Ji, who was here, and I am here because my nephew, dear Siddhartha Sachdeva, stays here in Houston. He is here for the past 10 or 12 years. Today he couldn't make it because he is shifting his house. But one of his friends, Sri Vinay Ji, brought me here. I am thankful to him. And I am thankful to the officers and authorities of Arya Samaj Greater Houston who agreed to make my visit to this holy place, because as Acharya Ji was mentioning, I was blessed to be born in a family who followed Arya Samaj in a very, very strict manner. My grandfather established an Arya Samaj in the Gaur Vachan pre-partition Pakistan, and my great uncle and my father, they were very strong followers, so they sent me and my cousin to Kanya Gurukul Hathras when I was 10 years old. For 3 years I was there, but that is where the foundation of Sanskrit in my life was laid. Although nobody in the family knew a word of Sanskrit, but being the followers of Arya Samaj, they did regularly the yajna, sandhya, and every ritual that the Arya Samaj has taught. And I was really enjoying the bhajans that right now were being sung, because when my grandmother would take me to the Arya Samaj in Delhi, these were the bhajans I have been brought up listening to, singing. So it's really a great pleasure to be here. When I thought of the topic, because I was in USA for participating in the conference at Michigan, and the title of the conference was Conference on the Study of Religions of India. So when I planned for attending the conference, I thought it's on the religions of India, and I would always be speaking, whenever given an opportunity, I would always speak about the Veda, Vedic tradition, Vedic ritual, or whatever comes under this purview. Although my specialization, academic specialization, is Indian philosophy, but this is my passion, this is my life, and this is my home where I feel most comfortable. So I chose the topic on yajna in Vedic tradition, and surprisingly, there was nobody on speaking on Hinduism from this point of view. So I am glad that I could represent Arya Samaj and the Vedic tradition there. And I have been speaking at various Arya Samajas of Delhi, more than 250. I think no Arya Samaj would be there where I have not been. I have been to Arya Samaj in London, but in Houston this is my first visit, so I am really, really glad. Just now, the Yajman family performed the Vedic ritual of Yajna with great reverence and in the proper manner, authenticated by the Acharya himself. So I am very sure that whatever I am going to say, most of you will already be knowing. But still, at times we repeat things to reassure ourselves and the community. So I would just be explaining what is Yajna first of all. As we all know that in the Vedas, there is a question which was posed that what is the end of the earth? If one is asked, what is the end of the earth and what is the center of the universe? Prichhami paro antah prithivyaha, prichhami asya bhuvanasya nabhi. What is the end of the earth and what is the center of the universe? And the answer given in the Veda itself says, iyam vedihi paro antah prithivyaha. This pious land where we perform the yajna just now, which is known as Vedi. So this is the end of the earth. If you have to go to the end of the earth, you have to come to this pious Vedi. And what is the center of the universe? Ayam yajyo bhuvanasya nadi. The yajna itself is the center of the universe. How and why? In Veda declares, yajyo vai shreshtha tamam karma. Yajna is the noblest of acts that one performs. We listen such statements from the Veda and also from other later Vedic tradition. But why the Yajna is the center of the universe? If we go deeper, if we just begin to analyze the word, the language Sanskrit is so beautiful that if you want to know the essence of the meaning of a word, you just unfurl the petals of a rose flower. जैसे गुलाब की पंखुड़ियां एक एक करके हटाते जाएं, तो उसमें से खुशबू निकलती है. ऐसे ही संस्कृत के एक एक शब्द की परत हटाते जाएं, तो उसमें से अर्थ निकलता है. तो यज्ञ, हाउ द वर्ड यज्ञ इज डिराइव. संस्कृत के हर शब्द की एक रूट होती है, एक वर्ब होती है. द वर्ब इज यज. यज के तीन अर्थ होते हैं और मुझे निश्चय मालूम है कि आप सब ये जानते होंगे. यज, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु. There are three meanings of the term yajna. The first one is the mode of worship that you just now perform. That yajna is the best mode of worship. It is the most scientific and the most secular mode of worship because we worship all the divine forces that are helping us in our life to sustain and strengthen and nourish our bodies and minds. So yajna, the first thing is deva puja. And who are the devas? We don't worship any of the devas incarnate. We worship the devas in nature, in environment. Agni. Agni, vayu, jala, prithvi, parjanya, parvata, nadi, samudra and what not. Whatever is given by God, that all we worship as a deva, deva puja. The next is, deva puja one can do sitting in his or her home comfortably. Anybody does it and we can do it also. But yajna is much more than that. Yajna is sangati karana, congregation, meeting all and in doing this mode of worship, performing this worship, in a collective manner that enhances the efficacy of yajna. So deva puja, sangati karan. We have performed the worship, we have also met so many people. All of them are like-minded people who come here to meet each other, to greet each other and also to enrich each other's lives, learning from each other. But that is also not complete yajna. The third aspect of yajna is dana. What is dana? Dana is giving our best to the society, to the world at large, and whatever one can, we offer the ahuti. Ahuti is offered with kheta and samatri. What is samatri? Samatri is again derived from the word samagra. What does samagra mean? Totality. So totality, total intensity of my body and mind, and that through that I offer whatever I have, samagri. It's not that I keep some things with me and I offer something, but whatever I have to offer, the full feeling, the intensity of my willpower, that all I offer, that is done. And also giving in charity to those who need something from us, that is also yajna. Because yajna is not just a ritual which is being performed in a mere mechanical way. Yajna is a ritual which leads us from this ritual to spiritual. What is spiritual? Spiritual is anything that is being activated, being within us. Whatever is beyond me, whatever is outside me, that is ritual. But whatever is happening within me, that is spiritual. So if I perform daily yajna as a ritual, I offer the samagri and the kritam, but nothing changes in me, then it is of no use. We have a famous story in the Mahabharata. I'm sure you must have heard it. If not, the story is of a golden goose, so Devala. युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें स्वयं कृष्ण बैठकर चरण धो रहे थे, अर्घ दे रहे थे। दिस वॉज परफॉर्म्ड इन अ वेरी वेरी ग्रैंड स्केल। यज्ञ इज कंप्लीट एंड एट द एंड ऑफ द यज्ञ द गोस वॉज कमिंग। एक देवला था जिसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा शरीर पटमैला था, जैसा कि उसका होता था। बार बार आकर वो मिट्टी में लोट लगाता था और चला जाता। ने देखा और लोगों ने भी देखा, अभी कोई कहानी है, केवल एक रूप वाक्य, दिस इज जस्ट अ मेटाफर। ऐसा नहीं है कि नेवला बोलता है या नेवला सुनहरा हो गया, ये कहानियां हैं हमें बात समझाने के लिए। तो नेवले से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों परेशान है, बार बार आते हैं मिट्टी में लोट लगाते हैं। नेवले का उत्तर था, मैंने सुना कि यहाँ बड़ा भारी यज्ञ था और इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप शायद मेरा जो आधा शरीर पहले कभी एक यज्ञ होने पर सुनहरा हो गया था, मुझे लगा बाकी बचा हुआ आधा शरीर आज सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। लेकिन मैं बार बार देख रहा हूँ मेरा शरीर कभी सुनहरा नहीं। मेरे यज्ञ में क्या कमी है, आपने प्रायश्चित आहुति दी, सुष्टक आहुति, यदि मुझसे कोई कमी रह गई है, यदि मैंने कुछ अधिक कर दिया है, तो ईश्वर अग्नि ने जात वेदा अग्नि सब जानता है, वो समझ जाएगा कि मैं किस इच्छा से ये आहुति दे रहा हूँ। सु इष्टकृत सुष्टकृत मुश्किल को भी लगा कि मैंने तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम और श्रद्धा से ये यज्ञ आयोजन किया, क्या कमी है। नेवले से कहा कि तुम ही बताओ मेरे यज्ञ में क्या कमी है, देखने में कौन सा ऐसा यज्ञ था जो पहले हुआ। तो नेवले ने कहा, एक परिवार था, निर्धन किसान का परिवार, बहुत ही गरीब थे, उन्हें चार चार दिन तक खाना भी नहीं मिलता। एक दिन उस परिवार को कहीं से भिक्षा में चार रोटियां, परिवार में चार ही लोग हैं, पति है, पत्नी है, पुत्र है, चार बैठे एक एक रोटी लेकर खाने के लिए। जैसे ही वो बैठे, सामने दरवाजे पर आवाज आ गई, शाम की, मुझे ठीक दो क्योंकि मैं भी बहुत दिन से भूखा प्यासा हूँ। ये बहुत ही गरीब व्यक्ति उनसे भी अधिक भूखा और गरीब आया सामने। तो जो परिवार का मुखिया था पति, उसने अपनी रोटी दे दी, चलिए मैं भी बहुत गुजारा करूंगा, लेकिन द्वार पर अतिथि आया है, इसलिए मुझे फिर उसकी पत्नी ने भी अपनी रोटी दे दी कि कोई बात नहीं, हम कल कहीं से भिक्षा लाएंगे, कल पूछा। पुत्र ने भी दे दी, पुत्र पत्नी ने भी दे दी, चारों भूखे थे, चार दिन बाद उन्हें भोजन मिला था, लेकिन बार पर कोई आ गया उसका सत्कार, उसकी क्षुधा करना अपने से बढ़कर, इसलिए उन चारों ने जब अपनी अपनी रोटी दे दी, तो householder has to take care of the elders in his family and in the society as well. ये है पितृ यज्ञ. चौथा है अतिथि यज्ञ कि केवल अपना खाना अपने परिवार को खिलाना यदि काफी नहीं. घर में जो अतिथि आते हैं उनका सत्कार करना, क्योंकि संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव. अतिथि की देवता है. और मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे हमारे परिवार में महात्मा आनंद स्वामी जी का भजन गाए, दो भजन पंडित देशराज जी के में. वो देशराज जी हमारे घर में भजन करते हैं और उनके घर में आने से, सन्यासियों के घर में आने से तरह तरह की जो समस्याएं होती थी गृहस्थ लोग उनको अपनी समस्या बताते थे और वो सन्यासी हंसते हंसते, क्योंकि सन्यासी को किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, वो समझाते थे और समस्या हल होती थी. अभी क्या करते हैं परिवार, एकल परिवार हो गए, न्यूक्लियस फैमिली, जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही है. सन्यासी समाज में या तो वैसे निष्क्रिय सन्यासी नहीं है, यदि है तो इस तरह घर घर जाते नहीं आज, क्योंकि घर वालों में गृहस्थों के पास उतना समय नहीं है, वो परंपरा ही नहीं है. और सलाह लेनी होती है तो उन्हें कहाँ जाना पड़ता, काउंसिलर के पास जाना पड़ता, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता. ये समाज की व्यवस्था की कि आप ब्रह्म यज्ञ करिए और सेल्फ एनरिच में, वट एवर यू नो इज नॉट सफिशियंट, यू हैव टू एनरिच योर सेल्फ डेली बाय रीडिंग दी स्क्रिप्चर्स. वेद का पाठ करिए, सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करिए और इसको भी विचार करिए. संध्या है, संध्या के मंत्रों का पाठ कर लेना ब्रह्म यज्ञ नहीं है, उन मंत्रों पर मनन करना ये देव यज्ञ किया. हमने अग्नि में अपना सर्वस्व आहुत किया, पितृ यज्ञ किया, अपने माता पिता गुरुजन और परिवार के जो वृद्धजन है उनकी सेवा की. अतिथि यज्ञ घर में आए हुए, और अतिथि कौन होता है, अतिथि जिसकी कोई तिथि ना हो. आज भी गेस्ट आते हैं लेकिन कैसे आते हैं, पूरा अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, आप किस समय डिनर पर आएंगे, लंच पर आएंगे, ब्रेकफास्ट पर आएंगे, कितने लोग आएंगे, कितने लेट करेंगे. ये अतिथि यज्ञ है, लेकिन ये वास्तव में वो अतिथि यज्ञ नहीं है जिसकी संकल्पना हमारी वैदिक परंपरा ने की. अतिथि वो है जो बिना समय बताए जब चाहे आ जाए. आपने कठोपनिषद का नाम जरूर सुना होगा, यम और नचिकेता की कहानी. तो केवल गृहस्थ जो थे वो गृहस्थ ऐसे नहीं जो घर में रह रहे, जो वानप्रस्थ थे, जो सन्यासी थे, वो भी सन्यासी को छोड़कर जो वानप्रस्थ थे वो भी इस पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे. कठोपनिषद में नचिकेता के पिता है वाजश्रवा, और वाजश्रवा कौन है, वो ऋषि है, लेकिन ऋषि होते हुए भी गृहस्थ है, उनका बच्चा है छोटा सा नचिकेता. उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सर्ववेदस यज्ञ. सर्ववेदस यज्ञ मतलब मैंने अपना सब कुछ दे दिया, घोषणा तो करवा दी, डेथ का पिटवा दिया कि मैं सर्ववेदस यज्ञ करने जा रहा हूँ, मैं सब कुछ दे दूंगा. यज्ञ हुआ और यज्ञ के बाद जैसा मैंने कहा देव पूजा संगतिकरण पड़ता, दान का अर्थ बाद में चलकर दक्षिणा हो गया. ब्राह्मण में केवल दान, दान एक बहुत व्यापक शब्द है कि जिसे जरूरत है, हमारे पास जितना भी है उसमें से कुछ देना है, ये दान है. लेकिन बाद में जब यज्ञ को केवल एक बहुत ही यांत्रिक मशीनी प्रक्रिया के रूप में या केवल कर्मकांड के रूप में हमने सीमित कर दिया, तो दक्षिणा को सबसे जरूरी, इतना जरूरी बना दिया कि यज्ञ आप कर ही नहीं सकते, वो पुरोहित यज्ञ करेगा आपके बिहाफ पर और आप उसे भरपूर दक्षिणा. लेकिन जब दक्षिणा का समय आया वाजश्रवा ऋषि के पास तो क्या था उस समय, गोधन की पिता पशु थी. सो वाजश्रवा ऑफर्ड 100 और वट एवर नंबर ऑफ काउस ही है, बट वॉट ही डिड, द हेल्दी काउस ही लिव इन द बैकयार्ड एंड दोज काउस विच वर ओल्ड एंड सिक ही ब्रॉट देम वन बाय वन एंड स्टार्टेड गिविंग देम अवे एज दक्षिणा इन जेल. इसलिए वो ऋषि हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भावना क्या, लोभ, हम अब दान भी करते हैं तो कौन सी चीज दान करते हैं, तो हमारे काम की नहीं है। बूढ़ी गायों को घर में रखेंगे तो सेवा करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी, तो अच्छा हो कि दान भी हो गया और सेवा से भी बचे। लेकिन एक छोटा बालक जो कि उसी ऋषि का पुत्र है, आयु होगी 10-11 वर्ष, वो देखता है कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, तो सर्व वेद व्यज्य कर रहे हैं और अच्छी अच्छी गायें बचा कर रखती है। उसने पिता से पूछा कि आप वो वाली गाय दान क्यों नहीं करते। एक बार पूछा, पिता ने सुना कर दिया। दूसरी बार पूछा, फिर हमें सुना दिया। तीसरी बार पूछा तो जैसे साधारण माता पिता क्रोध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम, अलग अलग तरह के शब्द बोलते हैं, वाजश्रवा ने बोल दिया, मृत्यु में मार रहा है, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को देखा। एकदम नचिकेता था सत्य वादी, उसने शब्द को पकड़ लिया, पिता ने अब मेरा दान किसको कर दिया, मृत्यु को, अब मुझे मृत्यु के पास जाना। पिता ने जो यज्ञ किया था वो कौन सा था, वो देव यज्ञ था। उन्होंने घोषणा तो की सर्व वेद की, लेकिन उनके अंदर रोग भी है, क्रोध भी है, तो विक्रोध होकर अपने संतान को कह दिया जाओ मृत्यु के पास। किंतु बालक है नचिकेता, वो सत्य काम है, सत्यवादी है, वो यम के हिमसेल्फ इज अ हाउस बॉय, और यम के घर जब अतिथि के रूप में नचिकेता पहुंचता है, छोटा सा बच्चा है, यमराज घर पर नहीं है। 3 दिन तक यमराज घर पर नहीं, बच्चा बैठा हुआ है, उसे तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, भोजन परोसे जा रहे हैं, लेकिन उस बालक ने जल ही रहना नहीं, क्योंकि मुझे तो दान भी दिया है, अब मेरा अपने ऊपर स्वामित्व नहीं है, मैं किसका हूँ, यमराज का, जब तक मैं यमराज को मिलूंगा नहीं मैं कुछ खाऊंगी। यमराज आते हैं, सबसे पहले जाकर उस बालक से क्षमा मांगते हैं कि 3 रात तुम मेरे अतिथि के रूप में आए और भूखे प्यासे पड़े रहे, मेरा तो सब कुछ नष्ट, आशा प्रतीक्षा संगति सुंदरता सब कुछ मेरा चला जाएगा, क्योंकि मेरे घर पर अतिथि भूखा प्यासा था। ये अतिथि यज्ञ की महिमा, ने उसे भोजन दिया, क्षमा मांगी और कहा कि उससे 3 वर मांगो, 3 रात तुम यहाँ
और
संस्कृत का शब्द है पिंड। तो जो कुछ इस पिंड के भीतर है वही ब्रह्मांड के अंदर। पिंड इज द माइक्रोकॉस्म एंड ब्रह्मांड इज द मैक्रोकॉस्म एंड देयर इज अ सिंक्रोनिज्म बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो। यज्ञ इज जस्ट अ सिंबल, अ सिंबल ऑफ दिस सिंफनी, दिस हार्मनी बिटवीन द माइक्रो। जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं अगर हमारे शरीर में, हम अग्नि में भी आहुति क्यों देते हैं, जल में क्यों नहीं देते, भूमि पर क्यों नहीं देते, वायु में क्यों नहीं देते या आकाश में क्यों नहीं देते, अग्नि में ही क्यों देते। अग्नि वही देवा नाम, क्योंकि अग्नि देवताओं का, देवता मतलब दिव्य शक्तियों का मुख है। हम भोजन करते हैं, भोजन कहाँ जाता है, हम देते हैं मुख, क्या मुख सारा भोजन अपने पास रखते। अगर किसी दिन वो कहे कि नहीं ये तो मुझे मिला खाना है तो मैं नहीं रोकूंगा, तो क्या सारा शरीर जीवन शीर्ण होगा, उनकी हालत खराब होगी। भोजन उसके अंदर जाता है और अंदर वो कैसे कैसे परिवर्तित होता है रक्त में और किस प्रकार संचरण करता है शरीर में, सारा शरीर एवरी ऑर्गेन विद इन आर बॉडी इज ऑफरिंग सेल्फ बॉडी connecting with the other. None of it says that this is mine and this is mine. If that is the case, then we know what will be the result. We shall receive. We will not be. Within a healthy body, every part is connected and every part is doing its duty in a very, very regular way. Similarly, Agni Gotra, when we perform Agni Gotra, we offer to the Agni. But Agni makes it such. There are two elements in the modern world, heat and energy. So we offer to the heat and it converts the matter into energy. Matter energy ke form mein aakar sakal ho jata hai. Stool se sukshma ban jata hai aur sare brahmand mein chala jata hai. Aap ek lal mirch chala kar dekhiye. Ek lal mirch kha kar dekhiye aur ek ko agni mein chala kar dekhiye. Khayenge to keval aapka muh jalega. और अग्नि में जला देंगे तो सारे आसपास के आपके यहाँ तो अलार्म भी बच जाएगा और धुआं सारे तरफ हो जाएगा। अग्नि में डालते ही मैग्नीफाई हो जाता है। इसी प्रकार जो चीजें हम इसमें डालते हैं उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अग्नि में डालते हैं, लेकिन अग्नि उससे क्या करती है, पहले हम देवी को पवित्र करते हैं। व्हाट इज देवी, पृथ्वी को हमने पवित्र किया, स्वच्छ किया। वेदी में और दूसरे स्थान में क्या अंतर, जहाँ बाहर हम एक जगह पर अपने माना अपने पूजे उतार के रखे ये धरती है और एक ये धरती है, क्या अंतर है। वेदी यज्ञ वेदी, सो यज्ञ सैंक्टिफाइज द अर्थ, प्यूरिफाइज द एयर। जब हम अग्नि में कुछ डालते हैं तो हवा शुद्ध होती है और उसके बाद आकाश में जाता है। जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो साउंड वेव्स, साउंड वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड, पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशंस। बिना मंत्रों के यज्ञ हो सकता है, यज्ञ में मंत्र का महत्व, क्योंकि हम आहुति देते हैं वो अलग, लेकिन ये जो मंत्र है ये साधारण शब्द है। तो मैं बोल रही हूँ वो एक शब्द है, लेकिन वहां जो हम पढ़ते हैं वो क्या मंत्र है, वो ऋषियों द्वारा मनन पूर्वक लिए गए विचार हैं और उन विचारों में आप वेद का कोई मंत्र उठा कर देखिए, जहाँ किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग या किसी हिंदू की बात नहीं। जब भी कहते हैं षडवंतु विश्वे अमृतस्य, विश्वे सब अमृत में शांति पाल करते हैं। शं नो द्यावा, शं शांति, नो हम सब के लिए, कौन करे यहाँ। स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति वो यदि मेरी ही नहीं, न हम सब के लिए स्वस्ति। तो यज्ञ जो है वो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, दीज आर द वाइटल एलिमेंट्स, फाइव एलिमेंट्स। इट कनेक्ट दीज फाइव एलिमेंट्स, नॉट ओनली कनेक्ट्स बल्कि उनको पवित्र बनाता है, उनके अंदर ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन लाता है। यज्ञ करने से वर्षा होती है, आपको मालूम है जहाँ जहाँ अनावृष्टि होती है वहाँ यज्ञ किए जाते हैं। रामायण में राजा दशरथ ने पुत्र कामेश के यज्ञ किया, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होता है, वृष्टि के लिए यज्ञ होता है, राज सूर्य यज्ञ होता है, राजा को अपना प्रभाव और वर्चस्व बढ़ाने के लिए होता है। तो यज्ञ इज फॉर फुलफिलिंग ऑल आर एस्पिरेशंस, ऑल आर डिजायर्स, बट नॉट सेल्फिश डिजायर्स। इफ आई परफॉर्म अ यज्ञ फॉर सेल्फिश डिजायर, इट विल नॉट बी यज्ञ। Later tradition in India, you find such types of things here. The tantric log bed kar sakte hain, wo bhi yajna, lekin wo kis liye karte hain? Wo apne labh ke liye aur dusre ki hani ke liye. Ye bhi yajna, it is the noble act, not only noble, it is the noblest of acts, because it is not performed with a selfish desire. It is performed with an elevating sense for the whole of humanity. एक सबसे बड़ी बात कि आपने देखा वैदिक परंपरा में जो यज्ञ होता है, कई यज्ञ होते हैं जहाँ स्त्रियों को आगे, आज भी ऐसे हमारे देश में सन्यासी और साधु हैं जो कहते हैं कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। एंड स्वामी दयानंद वॉज बॉर्न इन आवर सोसाइटी, स्पेशली हिंदू सोसाइटी, दिस वॉज अ नॉर्म दैट विमेन वर नॉट अलाउड टू टॉक ऑफ विमेन। We didn't have Vedas in India. We had to procure a copy of the Veda from Germany, from Mexico. Vedon ka naam lete the, lekin Ved kya hai, ye kisi ko pata nahi tha. Kuch vimen jo hai, panditon ne usko kanthast kiya tha, magar wo bhi uska yaad kar liye the, oral traditions, magar uska arth nahi maalum tha, aur dusre kisi ko padhne ka adhikar. Stri shudra na diya naam. स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। महर्षि दयानंद ने क्या किया, वेदों का द्वार सबके लिए अभिभजन आपने सुना, वेदों का टीका आया तो न केवल उन्होंने गेव अ कैरियर कॉल बैक टू द वेदास, बिकॉज ऑल फॉर्म्स ऑफ सुपरस्टिशंस वर प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी, बिकॉज एवरीबडी लुक फॉरवर्ड टू मेकिंग अ मैसेज। Vedic yajna proclaims that the man and woman, husband and wife, they will perform the yajna together. Abhi bhi pauranik parampara mein aap dekhte hain ki wo stri ko vamangi mein bithate hain, lekin Vedic parampara mein stri ko daayin taraf bithaya jata hai, because the dakshin avastha, the right hand is more active. So women are given a very very high status in Vedic yajna. जो नाम है वेद में संस्कृत में वाइफ को कहते हैं पत्नी, पत्नी शब्द ही कैसे बना। पाणिनि का नाम अगर आपने सुना हो, ही वॉज अ ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत, एंड ही सेज पत्युर्नो यज्ञ से होते, केवल शादी हो जाने से कोई पत्नी नहीं होती, जो पति के साथ यज्ञ में बैठेगी वो पत्नी है। तो पाणिनि के समय तक यज्ञ ने पत्नी को पूर्ण कहा। पाणिनी तो बहुत बाद में आई, अथर्ववेद का एक मंत्र है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि धर्म पत्नी क्यों कहते हैं स्त्री, पति को तो कोई धर्म पति नहीं कहता, ये कहाँ से शुरू हुआ। और संयोग की बात है, ढूंढते ढूंढते आई फाउंड अ वर्स, पत्नी वहां से धर्मणा अहम गृह पतिस्तव, दिस इज फ्रॉम अथर्ववेद, पत्नी मम से धर्मणा, तुम मेरी पत्नी हो किसके कारण, धर्म के कारण, इसलिए अहम गृहपति, मैं तो केवल घर का स्वामी हूँ, लेकिन तुम धर्म पत्नी हो, क्योंकि धर्म विल बी सेफ एंड साउंड अंटिल एंड अनलेस विमेन आर कमिटेड टू प्रोटेक्टेड फॉलो, इफ द विमेन डू नॉट फॉलो देयर धर्म देयर विल बी नो, इसलिए धर्म पत्नी और गृहपति। एक शब्द और है दंपति, पति पत्नी दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, दंपति, दम है घर, दम मीन्स होम, एंड पति पत्नी लॉन्ग की बड़ी ई की मात्रा लगानी चाहिए, अक्सर हम लोग छोटी लगा देते हैं, छोटी लगाएंगे तो पति ही घर का स्वामी, लेकिन शुद्ध संस्कृत शब्द जो है उसमें बड़ी ई की मात्रा है, विद प्रोलॉन्ग की, तो दम इज होम एंड पति बोथ both of them are the owners of the house, joint ownership. When we have got the joint ownership or joint loan, we come to the end. It will be a dampati, ya dampati samanasa, sunutaha jathavatava, deva so nityayashita. If those husbands and wives who perform the action together, they are always with them. So, patni, dharmapatni, grihapati, and dampati. So, he is not the only owner of the house. They have joint custody over the house. But the single custody of dharma is for the patni, for the wife. That is why in the Valmiki Ramayana, when Rama has to perform a yajna, and he had a vow, the Sita he has sent to exile, but he is alone. He didn't really keep. What did he do? He had to keep a golden icon of Sita by his side. That this is my wife and I am perfect. Patni ke bina pati yajna nahi kar sakta. Lekin aise bahut se yajna hain Griha Sutra mein, jo patni akele kar sakti. Ye sab baatein bhul chuke hain. Kisne yaad kiya? Swami Dayanu goes to him and we all go to him, especially I owe everything to him, because it was due to his following that my family sent me to Mandukula and I could learn Sanskrit, I could read Veda, I could recite Veda, and I have also performed two or three Vedic rituals. Arya Samaj ki parampara mein, Vedic parampara mein, koi bhi stri, koi bhi purush, thodi si training lekar, जिज्ञासा कर सकते हैं, करा सकते हैं, संस्कार करा सकते हैं. This is the glory of Vedic tradition. That yajna in Vedic tradition is not just an individual mode of worship. It is a universal offering. It is for the universal
welfare. So let us all come and join together for propagating this true message of the Vedas, which has been transmitted to us by Maharshi Dayananda Saraswati and the Arya Samaj propounded by him. It is a pity that these days we are forgetting his sacrifice, his message, and the message of the Vedas. Let us all come back to the call he has given, back to the Vedas. May all of us be granted by God the wealth, the health, and the bent of mind that we follow his message, we propagate his message, and the world becomes peaceful and harmonious. Thank you for listening to me with patience. Thanks a lot.